ओम शांति। 14-12-83 की मुरली को जो संडे को 1/7/18 को रिवाइज होने वाली है, उस मुरली को एग्जाम्पल मेथड के माध्यम से पहले रिवाइज करेंगे। बाबा ने इस मुरली में कई एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसमें कि पहला एग्जाम्पल है पंखा चंवर। तो बाबा ने कहा कि जैसे कोई श्रेष्ठ आत्मा होती है, रॉयल आत्मा होती है, कोई विशेष आत्मा होती है, तो उसके स्वागत में, सत्कार में, उसके अतिथि सत्कार में विशेषकर चंवर झुलाते हैं, पंखा करते हैं, उसको रेस्पेक्ट देते हैं। तो बाबा ने कहा इस प्रकार से आप जो प्रभु परिवार की श्रेष्ठ आत्माएं हैं, प्रभु परिवार के बने हो, तो प्रभु परिवार के बनने से सर्व प्राप्तियों के भंडारे से भरपूर बन गए, इसलिए आप सर्वशक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए, इसलिए जो प्रकृति है दासी बन आपकी सेवा करती रहेगी। आप श्रेष्ठ आत्माओं को विशेष आत्मा समझ करके जन्म जन्मांतर के लिए प्रकृति आपका चंवर अर्थात पंखा झुलाती रहेगी। तो पहला एग्जाम्पल था चंवर पंखा। सेकंड एग्जाम्पल है तिलक का। बाबा ने कहा कि तिलक, तो सेकंड एग्जाम्पल है तिलक का। बाबा ने कहा तिलक खुशी की निशानी है, श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, और जो जीवन में आने वाले कोई कारण होते हैं, मुसीबतें होती हैं, उसमें सफलता प्राप्त करने की निशानी है। तो बाबा ने कहा कि जब भी कोई श्रेष्ठ कार्य करने के लिए जाते हैं, जैसे कि बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उसमें विशेष उनको तिलक देकर के बधाई देते हैं कि आप इसमें सफल हों। तो बाबा ने कहा कि जो आप ब्राह्मण आत्माएं हैं, आप ब्राह्मण आत्माओं को बाप ने पहले से ही स्मृति का तिलक दिया हुआ है कि आप राज्य अधिकारी हो, राज्य अधिकारी सो तख्त अधिकारी, और तीसरी बात कौन सी है, स्वराज अधिकारी, तख्त अधिकारी और ताजधारी। तो बाबा ने कहा कि जो आप वर्तमान समय स्वराज की स्मृति में रहते हो, ये तिलक के आधार से आपको भविष्य में तिलक और ताज प्राप्त होता है। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय जो आप स्वराज का तिलक लगाते हो, उसी के आधार से आपको भविष्य में भी तिलक और ताज प्राप्त होता है। ये सेकंड एग्जाम्पल था। तीसरा एग्जाम्पल है गीत का, शंकर डांस का। बाबा ने कहा शंकर डांस बहुत प्रसिद्ध है। तो बाबा कहते जैसे कोई अच्छा गीत गाता है तो देखने वाले सुनने वाले स्वतः ही नाचने लगते हैं, यदि किसी को नाचना ना भी आता हो फिर भी उनके पांव हिलने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे जब बाप के स्नेह के गीत गाते हो तो बाप भी खुशी में नाचने लगते हैं। दूसरों को ज्ञान सुनाना ये भी एक डांस है। तो ये बाबा ने तीसरा एग्जाम्पल दिया। चौथा एग्जाम्पल है मधुबन निवासियों के लिए। तो बाबा ने कहा कि जैसे ट्रेन में इंजन लगा हुआ होता है और डिब्बे पटरी पर होती हैं तो स्वतः ही चलते रहते हैं, इसी प्रकार से मधुबन निवासी जो हैं, वो जो आपको इस मधुबन में जो आपकी दिनचर्या है, जो आपको श्रीमत मिली हुई है, ये आपके लिए जैसे कि एक पट्टा है। इस पट्टे पर आप स्थित हैं तो आप स्वतः ही आगे बढ़ते रहेंगे, आपको उसके लिए विशेष सोचने की भी जरूरत नहीं है, आप स्वतः ही योगी हैं, आप विशेष योग लगाने की, विशेष योग के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो ये बाबा ने चौथा एग्जाम्पल दिया, जैसे ट्रेन में इंजन लगी हुई होती है और डिब्बे पटरी पर हैं तो स्वतः ही चलते रहते हैं। और अगला एग्जाम्पल दिया बाबा ने यज्ञ का। तो बाबा ने कहा जैसे यज्ञ में जो हर साल कोई ना कोई एडिशन हो जाती है, नवीनता होती है, जो भी बाहर से आते हैं वो देखते हैं कि इस साल विशेष ये बातों की यहाँ नवीनता हुई है। तो बाबा कहते जैसे स्थूल में नवीनता देखते हैं, एडिशन देखते हैं, उसी प्रकार से जो यहाँ रहने वाले हैं उनमें भी हर बार कोई ना कोई विशेष नवीनता की लहर देखें। तो उसमें बाबा ने कहा कि जैसे नवीनता में आनंद की लहर दिखाई दे, आने वाले वर्णन करें कि इस बार मधुबन में विशेष आनंद की लहर का अनुभव किया, प्यार की लहर का अनुभव किया, ज्ञान की विशेषता की लहर का अनुभव किया। तो जैसे बाहर जो सागर में नहाने जाते हैं तो जब वो वहाँ सागर में लहर आती है तो उनको उन लहरों से लहराना ही पड़ता है, यदि उनको ऐसा ना आए तो वो सागर में डूब जाएं। तो यहाँ जो मधुबन में आने वाले हैं वो भी इन लहरों में लहराते रहें, उसका अनुभव करते रहें। तो ये पांचवा एग्जाम्पल था। और लास्ट एग्जाम्पल है स्थूल दिलवाड़ा का। तो बाबा ने कहा कि जो स्थूल दिलवाड़ा है उसकी विशेषता है कि उसमें हर एक कमरे में अलग अलग मूर्तियां हैं और हर एक मूर्ति की अलग अलग विशेषता है, और हर एक मूर्ति के जो डिजाइन है उसमें जो नक्काशी है डिजाइन है वो भी अलग अलग और वैरायटी है। तो जैसे उस दिलवाड़ा मंदिर में हर एक मूर्ति की, हर एक कमरे की अलग अलग विशेषता है, अलग अलग डिजाइन है। तो बाबा ने कहा कि मंदिर तो बहुत सारे हैं लेकिन ये मंदिर सबसे न्यारा और विशेष है। तो इसी प्रकार से जो चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है, इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं उन हर एक मूर्ति की विशेषता अलग अलग है और एक दूसरे श्रेष्ठ है। तो जो आने वाली आत्माएं हैं वो हर मूर्ति से कोई ना कोई विशेष विशेषता का अनुभव करें। तो जय मुरली में कुछ एग्जाम्पल थे। ओम शांति।
ओम शांति। जो संडे को मुरली चलने वाली है, प्रभु परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार, उसमें से सेल्फ चेकिंग मेथड से पॉइंट्स निकालने के लिए कहा था। तो सबसे पहला जो पॉइंट है सेल्फ चेकिंग का, जो मुरली का हेडिंग ही है प्रभु परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार, तो जब हम बाबा के बनते हैं, इस परिवार में आते हैं, तो क्या हम इस भावना से देखते हैं या सोचते हैं कि ये परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार है? जब स्टार्टिंग में आते हैं तो उस समय सब अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन जब आगे आगे चलते हैं, जब पेपर्स आने शुरू होते हैं तो जैसे बाबा मुरली में कहते हैं ना, कई बार एग्जांपल देते हैं कि सब कुछ अच्छा है, ज्ञान भी अच्छा है, बाबा भी अच्छा है, लेकिन ये परिवार जो है ये जो है थोड़ा ठीक होना चाहिए। मतलब हमारे हिसाब से हम सोचते हैं कि सब लोग हमारे जैसे हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक के संस्कार अलग अलग है और हर कोई जाके राजा नहीं बनने वाला है। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं ना कि अगर हर कोई राजा बनेगा, बाबा की शुभ भावना है, लेकिन हम जानते हैं कि हर एक राजा नहीं बनने वाला है हर एक अपने इसके हिसाब से राजा बनेगा ना, हर की किसकी बड़ी राजधानी होगी, किसकी छोटी राजधानी होगी। तो ये हो गया परिवार के हिस्से कि हम सचमुच इस परिवार को सर्वश्रेष्ठ परिवार देखकर सोचते हैं, समझते हैं और चलते हैं। वैसे सेकंड जो एग्जांपल दिया बाबा ने मुरली में कि सॉरी एग्जांपल नहीं सेकंड जो सेल्फ चेकिंग का पॉइंट निकाला इसमें जो है कि दुख के संसार से सुख के संसार में आ गए। जैसे बाबा ने कहा कि जब ज्ञान में आए, इस परिवार में आए, तो सचमुच हम दुख के संसार से इस सुख के संसार में आ गए क्या? ये तो कहने के लिए बातें हैं, हम तो उसी संसार में रह रहे हैं, उन्हीं लोगों के बीच में रह रहे हैं, लेकिन जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया तो उस ज्ञान से हमने इस हमारी जो फीलिंग्स, जो हमारे भावनाएं थी या हमारी जो सोच थी, उस सोच को हमने कहाँ तक परिवर्तन किया कि पहले भी वही बातें हो रही थी, अभी भी वही बातें हो रही थी, लेकिन बाबा ने जब हमें ज्ञान दिया तो ज्ञान के अनुसार हमने अपने आप को कितना चेंज किया, हमारी जो फीलिंग्स है, हमारे थॉट्स को है कितना चेंज किया कि सचमुच हम जो है दुख से अब सुख के संसार में आ गए। तो ये जो है सेल्फ चेकिंग की पॉइंट है कि हम जब हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आती है, ज्ञान के पहले वही परिस्थिति आती थी तो हम किस अनुसार या किस प्रकार से उसे सोचते थे या हैंडल करते थे, और ज्ञान में आने के बाद वही परिस्थिति हमारे सामने आ रही है तो हम किस प्रकार से उसे सोचते हैं या हैंडल करते हैं। तो ये है दुख के संसार से सुख के संसार में आ गए। हाँ, वो बहुत सारे पॉइंट्स है उसमें, तो कीचड़ में कमल, बहुत सारे पॉइंट्स है। थर्ड जो पॉइंट निकाला है उसमें बाबा ने कहा कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के। बाबा ने कहा है कि अभी जो है हमें जो है प्राप्तियों का समय है, या प्राप्तियों की खान प्राप्त होने का समय अभी हमें। तो सचमुच बाबा के ज्ञान में आने के बाद हम सोचते हैं कि हमारे में अब कोई भी अप्राप्ति नहीं रही, या दूसरे को देखकर हमारा चिंतन चलता है, मनन चलता है कि उसे ये मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा है, चाहे स्थूल में हो चाहे सूक्ष्म में हो। क्योंकि हम जानते हैं हर एक आत्मा की अपनी विशेषता है, हर एक आत्मा के अपने गुण हैं, उसे अनुसार उसे प्राप्ति होगी। हम हर एक से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। थोड़े दिन पहले डॉक्टर ब्रजेश ने क्लास लिया था ना, लव योर सेल्फ, फर्स्ट लव योर सेल्फ। तो हम अपने आप से कितना प्यार करते हैं, या दूसरे को देखकर हमारी स्थिति डाउन हो रही है कि उसे ये मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा है। तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, बाबा ने जैसे कहा कि ब्राह्मणों के खजाने में, या अभी जो है ये प्राप्ति का समय है। तो हम कितना इस बात को विशेष ध्यान देकर अंडरलाइन कर चलते हैं। चौथा जो पॉइंट निकला है इसमें, जब बाबा ने कहा कि स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात अनेक अनेक हद के चक्करों से छूटना। तो जब बाबा के बनते हैं तो हद के चक्करों से तो अपने आप ही छूट जाते हैं, लेकिन हम बेहद के चक्कर में आ जाते हैं, इसको उसको देखना शुरू कर देते हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो हम जो है हद से निकल के बेहद में आ गए। हद को तोड़ना इजी होता है, लेकिन बेहद को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्या कर रहा है, ये मुरली सुनने नहीं जा रहा है, ये कभी योग में दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो ऐसा करता है, ये तो मुरली में सो रहा है, योग में सो रहा है, बहुत सारी बातें अगर देखा जाए तो देखने के हिसाब से, सोचने के हिसाब से बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन इसका प्रभाव जो है हमारी वृत्ति पर, हमारे मन पर बहुत गहरा पड़ता है। फिर हम उस व्यक्ति को उसी अनुसार उसी नजर से देखना शुरू कर देते हैं, जो हमें अच्छा लगता है उसकी हर बातें, उसकी जो बुराई भी हमें अच्छी लगती है, और जो हमें अच्छा नहीं लगता वो चाहे अच्छी बातें भी करे तो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम तो बोलेंगे तो पोंगा पंडित जैसे ऐसे सुना रहे। तो बेहद के चक्कर को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारी जैसी वृत्ति होती है, अगर हमारा परचिंतन परदर्शन चल रहा है स्वदर्शन चक्र के बजाय, तो हम दूसरे का भी वही परदर्शन और परचिंतन का चक्र जो है चलाना शुरू कर देते हैं। दूसरों को भी बोलते हैं, अरे वो है ना, वो तो ऐसा ही है, बोलते हैं जो भले बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है। तो ये जो बेहद का जो है स्वदर्शन चक्र है, इससे इसके चक्र से मुक्त होना बहुत बड़ी बात है। तो ये जो चौथा पॉइंट निकला है कि स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात हद के चक्रों से छूटना। और जो पांचवा पॉइंट जो निकाला बाबा ने, जो मुरली में मधुबन वालों के लिए एग्जांपल दिया कि मधुबन में जो कितने प्यार से अपना घर समझ के सेवा करते हैं, एग्जाम्पल जो सेंटर्स पे भी देते हैं, मधुबन का एग्जाम्पल देते हैं। तो चाहे मधुबन की बात हो, चाहे सेंटर्स की बात हो, चाहे कहीं की भी बात हो, हम उतना ही प्यार से जो है बाबा की सेवा अपना घर समझ के करते हैं, चलते हैं या क्या करते हैं। कई बार जैसे देखा जाए कि अगर किसी को बताए कि ये क्लास का टाइम है, उस समय आपको सेवा करनी है या योग मिस करके सेवा करनी है, तो लोग जल्दी एग्री नहीं होते उसके लिए। जैसे बाबा के दिन हम देखते हैं कि जैसे शांतिवन में अगर वो वीडियो वाला व्यक्ति बैठ जाए कि भाई मुझे भी ज्ञान योग करना है, आज मौन कर रहना है और कुछ सेवा नहीं करनी, तो इतनी सारी आत्माएं जो पूरे वर्ल्ड में टेलीकास्ट होते हैं उन्हें सुनाई देगा या दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो जिस समय जिस चीज की इंपॉर्टेंस है उस चीज को उसको इंपॉर्टेंस देना। मधुबन माना ही सेवा, वो सेवा हमेशा फर्स्ट है, मधुबन में रखा गया ही सेवा के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप योग का टाइम है और उस समय आपको सेवा नहीं, लेकिन आप जानबूझ के कोई ना कोई सेवा निकाल के बैठ जाए। स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार अपने आप को चेंज करना है, तो वो बैलेंस होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए। जहां जरूरी होता है, बाबा कहते हैं कि अगर आप जहां पे जरूरी है, जहां पे सचमुच आवश्यकता है, उस समय आप सहयोग देते तो एक का हजार गुना मिलता है। तो समय और परिस्थिति के अनुसार देखकर सेवा करना। ऐसा नहीं कि आपके पास योग का समय है लेकिन आप उस समय वॉकिंग के लिए जा रहे कि भाई कोई बात नहीं, वॉकिंग भी करना जरूरी है, तो उस हिसाब से इतना प्यार से हम या तो लेबर समझ के सेवा कर रहे हैं, अपना घर समझ के सेवा कर रहे हैं। तो वो समय अनुसार परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेक करना है, चाहे वो मधुबन की बात हो चाहे सेवा की बात हो। तो ये पांच पॉइंट निकाले थे सेल्फ चेकिंग के। ओम शांति।
ओम शांति। संडे की मुरली का जो रिवीजन हो रहा है अभी, तो मेरे को टॉपिक मित्र मिला था, तो पहला टॉपिक निकाला कि बाप दादा द्वारा रचित अलौकिक ब्राह्मण परिवार। तो यह परिवार संगम युग में ही रचा जाता है स्वयं बाप दादा द्वारा। तो इसका भक्ति मार्ग में गायन है प्रभु परिवार, जैसे शिव परिवार कहते हैं उसको, शिव शंकर एक कहा गया है उसमें, तो शंकर पार्वती गणेश कार्तिकेय और अशोक सुंदरी, गणेश की बहन अशोक सुंदरी तो पूरा परिवार दिखा। और फिर बहू है, शिव जी की बहू है रिद्धि सिद्धि, गणेश की पत्नी, उसको कई शास्त्रों में बुद्धि और सिद्धि, और उनके जो पुत्र है शुभ और लाभ, गणेश के पुत्र शुभ और लाभ। इस प्रकार ये बड़ा परिवार भक्ति मार्ग में वर्णन किया गया है। और जितना तो अनेक एक ही परिवार है, कि जो भक्ति मार्ग में दिखाए, बाकी सब सिंगल सिंगल है। तो ये प्रभु परिवार का यादगार, भक्त लोग इस रात रात जागते, इस महिमा गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, कथा करते हैं। तो कितने 2500 वर्ष से यही करते आ रहे, द्वापर युग से, परिवार की महिमा, प्रभु परिवार की महिमा। तो इसी में टाइम पास हो जाता है, बिजी हो जाते और इसी में हम भगवान को याद करते हैं और भक्ति करते हैं। और भक्ति का फल अभी संगम युग में ये परिवार मिला है, तो बहुत भाग्यवान है जो इस परिवार के सदस्य बन गए, है ना। तो सारा विश्व के, जो ब्राह्मण है वो एक परिवार है, कितने धर्म है, कितने जातियां है, लेकिन सब एक हो गए, एक ही ब्राह्मण परिवार में सम्मिलित हो गए। तो यह ब्राह्मण परिवार है। तो बाप दादा ने क्या पहले जन्मते ही क्या बोला कि तुम आत्मा हो, आत्मा ही नहीं हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, मेरे बच्चे हो। तो बाप और दादा का, बाप और बच्चे का संबंध जुटा दिया कि हम पहले तो भगवान भगवान कहते थे, ईश्वर भगवान प्रभु, लेकिन बाप और बच्चे का संबंध नहीं था, दूर भागते थे, और अभी हम नजदीक आ गए, हमारा वो पिता है, परम पिता है। तो हम बाप और बच्चे का और भाई बहनों का संबंध, अलौकिक भाई अलौकिक बहन, ये परिवार के संबंध में आ गए हम। तो क्या हो गया, प्रभु परिवार। तो इस प्रभु परिवार के हम ऐसे अलौकिक सदस्य है। और दूसरा टॉपिक था प्रभु परिवार की प्रभु पालना, क्या क्या पालना आपको प्रभु इस परिवार में मिली जन्म से ही, सुबह उठते ही जो दिनचर्या चालू होती है जो पालना, तो रात तक जो पालना मिलती है वो पालना, फिर तीसरा परिवार, तीसरा टॉपिक प्रभु परिवार में प्रकृति सदाकाल के लिए दासी होती है, सदाकाल के लिए दासी होती है प्रभु परिवार में प्रकृति सदाकाल की दासी। तो अभी जो चवर झुलाने का हुआ दासी वही, फिर चौथा टॉपिक है प्रभु परिवार का यादगार शास्त्र क्या है, भागवत और गीता। भागवत माना चरित्र का यादगार है और गीता माना पढ़ाई का यादगार है, जैसे प्रभु शिक्षक बन के हम और गार्डली स्टूडेंट बनते हैं, तो इस पर चिंतन। फिर है छठवां प्रभु परिवार का यादगार रूहानी तारामंडल, रूहानी तारामंडल में हम ब्राह्मण परिवार को हम जोड़ सकते हैं। फिर प्रभु परिवार एक ही, प्रभु परिवार का एक ही दिल तक, इतना बड़ा परिवार है लेकिन दिल तक एक, सभी उसमें समा जाते हैं सारा, यानी बेहद का दिल तक है, कितने भी आओ कोई अनलिमिटेड है। तो इसमें ये बेहद का दिल तक प्रभु परिवार में जन्मते ही त्रिमूर्ति के तिलकधारी, प्रभु परिवार में जन्मते ही त्रिमूर्ति के तिलकधारी। और आठवां है प्रभु परिवार की झलक मधुबन निवासी। तो ये 8 टॉपिक निकाले थे। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। जो संडे को चलने वाली मुरली है उसका टाइटल है प्रभु परिवार श्रेष्ठ परिवार। उसका हमें होमवर्क मिला है कॉन्ट्रास्ट मेथड, प्रभु परिवार और हर का परिवार। अभी प्रभु परिवार की रचना तो सुन ली कि कैसे प्रभु परिवार बनता है, बाप दादा और बच्चे, और छोटा सा संबंध है, लेकिन जितने भी आते हैं उसका भाई भाई का और भाई बहन का संबंध, और कोई संबंध नहीं। लेकिन जो लौकिक परिवार है उसमें बच्चा जन्मता इसको पता भी नहीं, लेकिन उसके बहुत सारे संबंध जुट जाते हैं। कोई इसका मामा होता है, कोई चाचा होता है, कोई बहन होती है, कोई भाई होता है। दूसरी बात है कि जो बेहद परिवार है, ईश्वरी परिवार है, उसमें बाबा ने कहा कि जो ईश्वरी परिवार है वो कल्प में एक ही बार मिलता है, 5000 साल में एक ही बार। और वो जो लौकिक परिवार जन्म बाय जन्म परिवार मिलता है, यहाँ एक ही पिता सारे जितने भी हम जन्म लेते हैं उसमें परिवार में मात पिता सब अलग होते हैं, यहाँ सारे इतने जन्मों में भी ये आत्मा का पिता तो एक ही रहता है। दूसरा है कि जो लौकिक परिवार में जब भी बच्चा जन्म लेता है तो लोगों को होता है कि एक वारिस और पैदा हो गया, प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा। और यहाँ तो जितने भी परिवार, बड़े बाबा कहते हैं परिवार बढ़ना चाहिए, एक ही बच्चा अगर बाबा का बनता है तो बहुत खुशी होती है। चाहे सेंटरों में देखते होंगे कि अगर शिविर कराते हैं और उसके बाद बच्चे जब भी सेंटर पर आते रहते हैं तो बहनें खुश होती है कि हमारा परिवार बढ़ गया। तो परिवार बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा रिट्रीट सेंटर हर जगह पे खुलता जाता है, तो इतनी खुशी होती है। तीसरी बात है कि यहाँ सर्व प्राप्तियों का भंडार है। जो ईश्वरीय परिवार में कोई भी प्राप्ति की कमी नहीं होती है, और हद के जो लौकिक परिवार है उसमें मान सम्मान सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी कहीं महसूस होता है कि कोई इच्छा रहती है, कोई कमी रह जाती है कितना भी मिलने के बाद भी। या ईश्वरीय परिवार में जन्म जन्म के हमारी जो लकीर है, भाग्य की लकीर है, ऐसी बन जाती है जो 5000 साल, पूरा 5000 साल में हमें वो मदद करती है। अगर ईश्वरीय परिवार के नहीं बनते हैं तो वही 63 जन्म जो कीचड़ में रहते हैं और वो दैहिक स्थिति होती है, देहाभिमानी स्थिति रहती है, अहंकार की स्थिति रहती है, और उसमें ही मतलब कीचड़ में रहते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं कि ये ईश्वरीय परिवार में 63 जन्मों के कीचड़ से क्या बन गए, कमल बन गए, तो कमल पुष्प बन गए। तो ये ईश्वरीय परिवार प्राप्तियों का परिवार है। अगर ईश्वरीय परिवार में प्राप्तियां नहीं है तो कुछ भी नहीं। अगर ईश्वरीय परिवार में हमें प्राप्तियों का अनुभव भी करना है, और अनुभव कब होता है, जब बाबा के बनते हैं तभी हमें अनुभव होता है। दूसरा है कि बाबा ने कहा कि यहाँ जो यादगार बनता है वो एक है कि शिव बाबा हमें पढ़ाता है, उसकी यादगार भक्ति मार्ग में गीत गाते रहते हैं, वो है गीता। और जो भगवान के चरित्र हैं, जो बाबा ने हमें जो बच्चे बन करके जो पालना की है, जो हमें प्यार दिया है, उसका भागवत में बहुत सारे गायन है। कृष्ण के साथ गोपियों का गायन, और कृष्ण जब ही गोवर्धन पर्वत पर सभी को लेके खड़े हैं वो गायन, मतलब बहुत सारे गायन है। और एक और भी गायन है कि बाबा हमेशा कहता है कि ज्ञान सूर्य बाबा, चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और हम लकी सितारे। उसके लोग लौकिक में क्या करते हैं, पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, नक्षत्रों की पूजा करते हैं, तो पुजारी के रूप में है। जब भी हम बाबा हमें पूज्य रूप में बना देते हैं, फिर देखते हैं कि स्वदर्शन चक्र, बाबा ने कहा है कि स्वदर्शन चक्र जो ईश्वरीय परिवार के होते हैं वो स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, और वो लोग जो होते हैं लौकिक परिवार में बहुत बेहद प्रकार के बहुत चक्करों में घूमते रहते हैं, हद के ऐसे चक्कर होते हैं जिसमें निकल नहीं सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ ईश्वरीय परिवार जो है उसमें आपने देखा होगा कि कोई अनजान जगह पे भी जाएंगे और कोई व्यक्ति आपको मिलेगा व्हाइट कपड़ा पहना है, वेश पहना है, तो हम खुश हो जाते हैं, चाहे पहचाने ना पहचाने, हमको लगता है हमारा परिवार का हम एक सदस्य मिल गया। तो ईश्वरीय परिवार में पूरी प्राप्तियां हैं। ईश्वरीय परिवार में और भी क्या है कि यहाँ खुशियों के झूले में झूलते हैं, कितना भी अशांत हो, दुख हो, लेकिन बाबा ने ऐसा ज्ञान दिया है, रामा का ज्ञान दिया है, बाबा ने हमको ज्ञान देते देते योगी बदला दिया है, योग बदल गया, धर्म भी परिवर्तन हो गया, जिस धर्म में मानते थे, जिस भगवान को मानते थे उसमें हम यहाँ ईश्वरीय परिवार में एक ही बाबा को अपना बाप मानते हैं, सर्व संबंध उनके साथ है। लौकिक में तो बहुत प्रकार के संबंध होते हैं और निभाते भी नहीं है, यहाँ बाबा तो बहुत पालना देते हैं, निभाते हैं और सबको सुख के सागर में लहराते हैं, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है। ऐसा नहीं कि कलयुग वाले तो कलयुग में ही रह गए, हम कलयुग से संगम युग में आए। संगम युग में आए माना कि हम जैसे नकीलिक में बोट पर बैठते हैं ना, तो जब बैठते हैं लेकिन चलना शुरू करते हैं, तो वैसे हम संगम युग एक बोट में चलना शुरू किया है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बाबा के ज्ञान में चलते हैं वैसे वैसे प्राप्तियां होती जाती है, तो सुख का सुख के सागर में लहराते हैं। फिर जैसे आपने देखा होगा ओम शांति भवन में एक चित्र है सामने, उसमें जो दास दासियां हैं जो महाराजा महारानी होते हैं उसको चंबर झुलाती है, मतलब वैसे बाबा ने कहा कि यहाँ ईश्वरी परिवार में जब बाबा के बन जाते हैं तो प्रकृति हमारी दासी बन करके हमारी हमें चंबर झुलाएगी, और वहाँ जो लौकिक परिवार में रहते हैं वो खुद ही मतलब कि बहुत फंसे रहते हैं, वो कभी भी ऐसे प्राप्तियों का अनुभव नहीं करते हैं। यहाँ हमने देखा कितना भी क्रिकेटर्स होते हैं, कितना भी उनका सब कुछ होते हुए, कितने भी इस दुनिया में जो एक्टर्स होते हैं बहुत नामी ग्रामी हो जाते हैं, फिर भी उनके जीवन में देखो तो अशांति दुख और अशांति होती है, लेकिन बाबा के परिवार में सभी बच्चे कैसे हैं, खुश मिजाज रहते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। संडे का मुरली से मुझे होमवर्क मेथड मिला है, तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या बाबा ने पॉइंट्स बोला है उसे हम कैसे होमवर्क हम ले सकते हैं। पहला पॉइंट है मुरली में एकदम लास्ट पॉइंट है, अच्छे संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, साथ साथ उसमें दृढ़ता को बार बार अंडरलाइन करने के लिए बाबा बोला है। जो भी हम संकल्प करते हैं चाहे पुरुषार्थ में हो जो भी हो, दूसरों के प्रति शुभ भावना के संकल्प हो जो भी हो, उसके उसकी उसमें दृढ़ता की दृढ़ता को बार बार अंडरलाइन करने के लिए बाबा बोला है, तो ये एक होमवर्क लेना है। और दूसरा है मधुबन निवासी के बारे में बाबा ने बोला है, उसमें बाबा ने सदा बाप की कशिश में रहना है और सदा मायाजीत रहना है, तो इसमें हम देखना है कि सदा किसी और की कशिश में हम नहीं जाना है, सदा बाप की कशिश में रहना है। और बाबा ने बोला है मधुबन निवासी ने सेवा में 100 मार्क्स लिए है, लेकिन इस ऐसे ही सब सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स लेने के लिए बाबा बोला है, तो ये भी होमवर्क है। तो वो हम देखना है जैसा सेवा हम करते हैं साथ साथ बाकी और तीन सब्जेक्ट में भी कैसा हम करते हैं वो भी हम देखना है, तो ये दूसरा होमवर्क है। और तीसरा है त्रिमूर्ति तिलकदारी बन सदा विशेष सेवादारी समझ अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाने की सेवा करना है। हम भी त्रिमूर्ति तिलकदारी तीन तिलक बाबा ने बोला है, पहला तिलक है स्वराज्य की तिलक, दूसरा है सर्विसेबल का तिलक, और तीसरा है सर्व परिवार के और बाप दादा के स्नेह और सहयोगीपन का तिलक। ये तीन तिलक हमेशा रहना है और इसके तिलक के साथ विशेष सेवादारी बन अनेक आत्माओं को उमंग दिलाने की सेवा करनी है। और चौदह है प्रभु परिवार की अधिकारी बच्चे बने हैं, तो इसमें इससे हमको पवित्र पालना मिल रहा है और अलौकिक प्राप्तियों भी है, तो ये इस दोनों को हम अनुभव करते हैं क्या नहीं वो हम देखना है। ये प्रभु परिवार में हमको पवित्र पालना मिल रहा है और प्रभु के अलौकिक प्राप्तियों को अनुभव करना है। बाबा ने ऐसा पूछा है अब ऐसा अनुभव करते हो तो वो भी हम अनुभव करना है। और पांचवा है मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, जिसमें प्रकृति भी दासी बन सेवा करना है, तो ये मास्टर सर्वशक्तिमान इसमें बाबा ने बोला है कि हमारा परिवार भी बदल गया है, युग भी बदल गया है और हमारा कर्म भी बदल गया है। जैसे हम दुख की संसार से धर्म अच्छा इसमें कर्म था और दुख की दुनिया से हम सुख की दुनिया में कितना हम आए हैं, और साधारण से पुरुषोत्तम कितना हम बने हैं, और 63 जन की किचड़े में कितना हम कमल समान बने हैं, और परिवार माना वार से परे कितना हम हमारा समस्या है वो हमारे लिए वार है, तो उससे कितना हम परे जा रहे हैं। और बाप की दिल तख्त नशीन बनना है, तो ये सब में अगर ये सब बदलना है तो ये समान हम लेना है मास्टर सर्वशक्तिमान, तो इससे ये सब हम देखना है। और लास्ट है रोज अमृत वेला में बाबा ने बोला है स्वतर्शन चक्रधारी बन विस्मृति और स्मृति के चक्र से अनेक चक्रों से छूट जाना है। तो ये हम रोज अमृत वेला में ये करना है, स्वतर्शन चक्रधारी स्थिति में स्थित विस्मृति और स्मृति के चक्र से हम छूट जाना है। ओम शांति।
ओम शांति। क्वेश्चन बताए, हम जानते हैं बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार को देखते रहते हैं, तो हम ये पूछेंगे कि ब्राह्मण परिवार कौन सा परिवार है, कितना ऊंचे ते ऊंचा परिवार। दूसरा है, बाप दादा सबसे पहले किस संबंध में लाया, जिस संबंध में आने से आपस में भी कौन सा संबंध जुटा। परिवार के प्यारे संबंध बाप और बच्चे के संबंध में लाया, पवित्र संबंध भाई बहन का जुटा। बहुत अच्छा। कभी स्वप्न में भी सोचा नहीं था, संकल्प में भी सोचा नहीं था, सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य क्या है। साकार रूप में डायरेक्ट प्रभु परिवार में वारिस बन बरसे के अधिकारी, वारिस बनना सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य है। कभी सोचा नहीं था कि स्वयं बाप हम बच्चों के लिए हमारे समान साकार रूपधारी बन बाप और बच्चे का व सर्व संबंधों का अनुभव कराएंगे, साकार रूप में भी प्रभु पालना देंगे। चौथा है, अनुभव करने का भाग्य कब प्राप्त होता है, कौन से झूले में झूल रहे हैं और कौन से पालना में पल रहे हैं। भारी बन बाप और बच्चे का व सर्व संबंधों का अनुभव कराएंगे, साकार रूप में भी प्रभु पालना देंगे। चौथा है, अनुभव करने का भाग्य कब प्राप्त होता है, कौन से झूले में झूल रहे हैं और कौन से पालना में पल रहे हैं। अनुभव करने का भाग्य तब प्राप्त होता है जब प्रभु परिवार के बने पवित्र पालना में पल रहे हैं और अलौकिक प्राप्तियों के झूले में झूल रहे हैं। पांचवा है, प्रभु परिवार में आना माना, प्रभु परिवार में आना माना जन्म जन्मांतर के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन जाना, और क्या है, वार से परे। छठा है, श्रेष्ठ आत्माओं की स्वागत में क्या करते हैं, रिगार्ड में क्या करते हैं। हाँ, आपका टॉपिक ही था, श्रेष्ठ आत्माओं के स्वागत में चमर झुलाते हैं और प्रकृति सदा काल के लिए क्या करती है, रिगार्ड देती रहेगी। सातवा है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात कौन से स्मृति रखो सदा समर्थ रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात अनेक हद के चक्करों से छूट जाना, और कौन से स्मृति रखो तो सदा समर्थ रहेंगे, मैं कौन। ओम शांति।
तो इधर से शुरू करो, पहले बताओ आप ईश्वरी परिवार की विशेषता है के सेवा में बिजी सदा, पहली विशेषता, दूसरी न्यारा प्यारा, तीसरी सदा भाग्य की स्मृति में रहने वाले, ये ईश्वरी परिवार की विशेषता है। माना वो उनका रहना सहना कैसा, सोच कैसा, बोल कैसा, हमारा कैसा है। हाँ, वो लड़ाई झगड़े वाले, हमारे भी लड़ाई झगड़े कौन से, वो बाहर के हमारे आंतरिक लड़ाई झगड़े, आंतरिक मन मन अंदर के अंदर उनके दिखाई देते, हमारे दिखाई नहीं देते तो और क्या विशेषता है, कल्प में एक बार ही, एक ही बार परिवार प्रभु परिवार बनता है, प्रभु का परिवार है ये, वन वन की काठी, वो जो बाबा साकार मुरली में कहते हैं लकड़ियों की जो होती है। यहाँ मालूम नहीं पड़ता है फेस। और ईश्वरी परिवार की विशेषता है, स्नेह के बंधन में बंधे हैं और संसार में देह के बंधन में बंधे हैं। यहाँ संस्कार मिलन की राह से, वहां संस्कार का टकराव है। यहाँ भाई बहन का पवित्र संबंध है, वहां इस परिवार में सब संबंध का है। और यहाँ निस्वार्थ प्यार है। ठहर, मंजू बहन जी बोल रहे बहुत देर से, एक मिनट सुना नहीं अभी तक है। ये मुखवंशावली है, वो कुखवंशावली है, और स्वर्ग में सुख वंशावली। और क्या होंगे, ये बेहद का परिवार है, बोहद का परिवार है। और यहाँ यहाँ संसार में होता है, जो जैसे शादी करते हैं तो एक साजन की दूसरी सजनी आ जाए तो क्या होता है, बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं, जलसी होती है। लेकिन यहाँ बाबा की अनेक सजने, तो हम और ही खुश होते हैं, तो और भी सजनी आई। वहाँ यहाँ इतना बड़ा बेहद का तख्त है, जितने मर्जी बैठ जाएं, और वहाँ तो प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वहाँ डिफेक्टेड है, यहाँ परफेक्ट नहीं है, बन रहे हैं। यहाँ परफेक्ट बन रहे हैं। और हाँ, वहाँ उदास उदास है, यहाँ खुश हैं सभी। हाँ, बा मन मत पर चलते हैं, ऐश्वर्य मत में है, वो परमत में है, ये श्रीमत पर हैं। यहाँ सबका एक ही घर है, एक ही दिनचर्या है, एक ही बाप है, एक जैसे कपड़े हैं, एक जैसा बैज लगा हुआ है, एक जैसे संकल्प चलते हैं, एक जैसा योग है, एक ही सेवा सबकी। क्या है? योग, एक ही योग, सबका मुखिया एक ही है। हाँ, सदा दाता समान सबको स्नेह सहयोग प्यार एक बराबर देते हैं, एक ही धारणा है जी। श्रीमत एक है, और मुरली भी एक है, पढ़ाई एक, संबंध संपर्क बाप से सब एक ही बाप से सर्व संबंध, और सबका लक्ष्य एक। पीछे वाले बोलो, आप पीछे वाले को मौका नहीं दे रहे, पीछे वाले राजे बोलेंगे भी। ये छोटा परिवार ईश्वर परिवार है, लेकिन बड़ा परिवार है ये, और पूरे विश्व में छाया हुआ है। कहां भी चले जाओ तो बताया ना, श्वेत कपड़े वाले दिखेगा तो, लेकिन बैज वाला कौन सा बैज वाला, ये भी अभी पता होना चाहिए। दूसरे हमारे पड़ोसी वाले ना हो, जो मित्र लोग हैं, फिर भी हैं तो अपने ही है, भूतपूर्व है वो, अभी वो अपने बनेंगे। हाँ, और हाँ, यहाँ सबको पढ़ाई, चाहे बुजुर्ग है चाहे बचपन है, सबको पढ़ाई एक जैसी है। ये परिवार भी है, पाठशाला भी है, यूनिवर्सिटी भी है, स्कूल भी है, विद्यालय भी है, हॉस्पिटल भी है, हैं? एक ही घर है, एड्रेस सभी का एक ही है, बाकी सब सेवा केंद्र है। जैसे चाहे लौकिक में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो भी सेवा केंद्र है। हाँ जी, इक्वल प्यार है यहाँ, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं मैं सर्विसेबल बच्चों से प्यार करता हूँ, देता बराबरी है, छोटे बड़ी सभी इकट्ठे पढ़ते हैं। ये परिवार 100 साल तक चलता है, कैसे पता, 100 साल से आगे हो गया तो अप्रोक्सीमेटली। इस परिवार में बाहर नहीं है, हाँ, बाबा सबकी देख रेख करते हैं, चाहे कोई भी है उसके लिए तो सब बच्चे हैं, और बाहर से परे रहते हैं। लेकिन बाहर अगर कभी होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, तो जब कोई आता है बाहर के लोग, तो ऐसे आपस में मिल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे भी होता है कई बार। इस परिवार में हर एक सदस्य विशेष है, यूनिक है, बाबा स्वयं भगवान का चुना हुआ है, सभी राजा बच्चे हैं, कोई अपने आप को कम नहीं समझता। हाँ जी, सभी संतुष्ट रहते हैं, सबको सब खजाने प्राप्त हैं। तो ये चेकिंग भी करनी है, ऐसे ही सारे की नहीं, सबको सम्मान दे दिया है। और हाँ? क्या है, प्रभु परिवार पवित्र प्यार, पवित्र परिवार, ठीक है।
खुश करना पड़ता है,
हाँ, यहाँ पर एक कोई भगवान को खुश करो तो सब खुश हो जाएंगे, और वहां तो सबको अलग अलग से करना पड़ता है, अगर नहीं हुए तो फिर और ही मुसीबत हो जाती है। नहीं माना, यहाँ बीज से प्यार करो तो वृक्ष से अपने आप हो जाएगा। कौन बोल रहा है? अच्छा आप बोल रहे हैं। हाँ क्या बोलते? हम संगम युग, संगम युग का दुनिया को पता ही नहीं है, हम संगम पर बैठे हैं। और सर्व समस्याओं की एक ही कौन सा मंत्र? हाँ बाबा ने हम सबको सर्व समस्याओं को एक ही मंत्र दिया है, पवित्र बनो योगी बनो। हाँ रीत प्रीत गीत मीत यहाँ एक ही है, सबसे एक के गीत गाने हैं, दूसरे गीत गाने की जरूरत नहीं है। हाँ वो प्रकृति का तांडव, अगर प्रकृति तांडव करती है तो लोग गाली देते हैं कि क्या करे, लेकिन वहां और ही सकाश देते हैं। जैसे कल बोला था ना बाबा ने प्रश्न में कि ये कल्याणकारी है, विनाश होता है, परसों तो ये बाप का क्या है, प्लान है ये, तो ये प्लान कल्याणकारी है। और है हाँ वो भगवान को मानते हैं, का मानते हैं, भगवान जो कहते हैं वो मानते हैं हम। यहाँ वास्तव में वो फैमिली प्लानिंग करते हैं लेकिन होती नहीं है उनसे, करते इधर हैं। यहाँ पुरुषार्थ सूक्ष्म है। हाँ और यहाँ सभी त्रिकालदर्शी हैं, पांच कालदर्शी भी हैं, पांच नेत्री त्रिकालदर्शी। हाँ जी हाँ, यहाँ सूक्ष्म में सारा यात्रा हमारी, बैठे बैठे है, चलते फिरते हैं, वो यात्रा में कितने लफड़े होते हैं है ना, और इस यात्रा में तो बैठे बैठे कर सकते हैं, सोए सोए भी कर सकते हैं। बाबा ने कहा यहाँ ज्ञान ज्ञानेश्वर राज राजेश्वर योग योगेश्वर, सबसे पहले ज्ञान ज्ञानेश्वर, फिर योग योगेश्वर, फिर राज राजेश्वर, और वहां क्या है फिर वहां भोग भोगेश्वर। राइट भोग भोगेश्वर है। हाँ यहाँ सभी त्रिनेत्री हैं, बाहर में दो नेत्री हैं, इधर बहुत समझदार हो गए, वो बेसमझ है। हाँ यहाँ माताओं को विशेष दर्जा दे गया, उनको आगे रखा गया है, और संसार में माताओं को तो बेचारे दबाया जाता है, ये तो खराब बात है। हाँ जी हाँ, स्त्री स्वर्ग का द्वार है यहाँ, और वहां वो उल्टा कहते हैं, हर फंक्शन का एक ही ड्रेस है। हाँ वास्तव में एकता में एकता यहाँ पर है, संसार में ऐसा नहीं है केवल कहने मात्र है, वो यहाँ भाई भाई का संबंध है। संसार में कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख से आपस में भाई भाई, लेकिन है नहीं है वो वास्तव में यहाँ पता चलता आगे, वसुदैव कुटुंबकम की भावना यहाँ पर है। और निखिलेश भाई हाँ, यहाँ सब डबल लाइट उठते रहते हैं, खुश भी रहते हैं, आपस में मिलते जुलते रहते हैं, आर्थिक चिंताएं, पारिवारिक चिंताएं, चिंताएं चिंताओं की चिंता पर चल रही, शादी की चिंता नहीं होता तो चिंता, होता तो चिंता है, मुसीबतें भी हैं, हाँ वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं, वो तो खैर ब्राह्मण संसार में भी देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी चिंताओं से परे रहते हैं। हाँ बन बन की काठी, हाँ भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, जबरदस्ती भी मिला लेते हैं। हाँ एक जन्म की प्रारब्ध है हमारी, अनेक जन्म जन्म की प्रारब्ध है, और उसकी अनुभूति अभी भी करते हैं। ये परिवार विश्वव्यापी है, ये अनलिमिटेड वो लिमिटेड है, सीमित है असीमित है। और 108 तो होगी होगी ना, नहीं शायद। और तो ये हम लिखेंगे ना तो लिख सकते हैं, मैंने लिखी है वैसे, लेकिन दूसरे तरीके से लिखी है, इसको पहले तरीके से लिख देंगे अभी, ठीक है ओके ओम शांति।